مسیح یسو کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو پاس ضیاء المسیح کی طرف سے سلام پہنچے، اور آپ سب کو مسیح یسو کی پیدائش المسیح کے سلسلے میں کرسمس مبارک. آج ہم جس بات پر بات کرنے کے لیے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں وہ ہے کہ کیا مسیح یسو کا جنم دن، مسیح یسو کی پیدائش کا دن 25 دسمبر، کیا 25 دسمبر واقعہ ہی صحیح ڈیٹ ہے جس کو کلیسیا جو ہے وہ ہزاروں سال سے مناتی ہوئی آ رہی ہے؟ تو کیا یہ صحیح ڈیٹ ہے؟ اس بات پر ہم بات کریں گے. لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیلنڈرز استعمال کریں گے، ہم ہبریو کیلنڈر کا استعمال کریں گے، ہم انگلش کیلنڈر جسے گریگورین کیلنڈر جو رائج الوقت ہے اور پوری دنیا میں چل رہا ہے اس کے مطابق، اور ان دونوں کیلنڈرز کا آپس میں میچ کر کے دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ کس طرح سے ہم اس ڈیٹ پر پہنچتے ہیں اور کیسے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ صحیح ڈیٹ ہے، اور کیسے لوگ جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ڈیٹ نہیں ہے تو وہ ان کے پاس کیا آرگیومنٹس ہیں، اور ان ساری باتوں کو آج ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے اس بات کو مانا، پہلی صدی میں بھی مانا کہ مسیح یسو کی جو پیدائش کا دن ہے وہ 25 دسمبر ہی ہے. تو ایک اسکالرز کی ایک لسٹ ہے، مسیحی علماء کی ایک لسٹ ہے جو اس کو مانتے ہیں. یہ کوئی مسیحیوں نے ایسے ہی قرآن اندازی کر کے یہ دن نہیں رکھ لیا، یا کسی قوم کو نیچا دکھانے کے لیے، یا کسی قوم پر اپنا غلبہ ظاہر کرنے کے لیے، یا سورج دیوتا کے دن پر اس دن کو نہیں رکھ لیا گیا، بلکہ مسیح یسو اس دنیا پر غالب آئے ہیں اور اب جو ہے مسیح یسو کی نسبت سے سب کچھ ہے. ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اس کا اقرار کرے گی، اور اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکا ہے اور ہر زبان اس کا اقرار کر رہی ہے. سب سے پہلے ہم مارٹر جسٹن شہید کے نام سے ان کا نام ہے، اور وہ پہلی صدی میں وہ موجود تھے اس دنیا میں. انہوں نے رومی کیلنڈر سے ثابت کیا تھا کہ یسوع المسیح کی پیدائش جو ہے وہ 25 دسمبر ہی کو ہوئی تھی. وہ اپنی کتاب اپولوجی والیوم 1 اور پیج 34 پہ یہ لکھتے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہائپو لائٹس کے نام سے تیسری صدی کے ایک مسیحی اسکالر ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح یسو کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر ہی کو ہوئی تھی. اور اس کے بعد کرائسوسٹم کے نام سے چوتھی صدی میں ایک مسیحی مبلغ گزرے ہیں. انہوں نے 386 اے ڈی میں باقاعدہ ایک واز میں، جو کہ وہ بالکل 25 دسمبر ہی کو وہ کر رہے تھے، اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ 25 دسمبر ہی مسیح یسو کی تاریخ پیدائش کا دن ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیرل آف جیروشلم، اور یہ تقریباً چوتھی صدی کے ایک مسیحی عالم تھے جنہوں نے جولیس جو بادشاہ تھا اس نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ مسیح یسو کی صحیح تاریخ و پیدائش جو ہے اس کا احاطہ کریں، اس کو جانیں اور اس کا پتہ لگانے کی کوشش کریں. تو اس کام کے لیے انہوں نے اس رجسٹر کا بھی استعمال کیا جو ٹائٹس جو تھا وہ روم سے لایا تھا. جب مردم شماری کی گئی تو مسیح یسو کی ماں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے بطور خاندان اس وقت وہاں پہ اپنا جا کر نام لکھوایا تھا، وہ جو سینسز کروائے گئے تھے. اور پھر پانچویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ریاضی دان جوزف ہیرا سنگھ اپنی کتاب تصفیہ مسیحی تقدیم میں وہ لکھتے ہیں کہ مسیح یسو کی پیدائش جو ہے وہ 25 دسمبر ہی کو ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کیلکولیشن سے اس بات کو ثابت کیا ہے. اور چھٹے نمبر پہ سر آئزک نیوٹن جو ہیں دو پروفیسیز آف ڈینیل اینڈ اپوکلائپس دا پروفیسیز آف ڈینیل دا اپوکلائپس سر آئزک نیوٹن نے اس کتاب میں اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقعی جیزس کی پیدائش جو تھی وہ 25 دسمبر کو ہی تھی، یسوع المسیح کی پیدائش جو تھی وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئی تھی. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ اور اردو بولنے والے جو مسیحی आलम हैं उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं गुजरनावाला के पास्टर अनवर मसीह का नाम लेना चाहूँगा, ए एम गिल, वो अपनी डॉक्यूमेंट्स पे अपने लिए लिखते हैं। तो उन्होंने भी बड़े ही अदाद शुमार के कैलकुलेशंस के साथ इस बात को साबित किया है कि मसीह यीशु की जो तारीख पैदाइश है वो 25 दिसंबर को हुई है। और उसके बाद यूके में रहने वाले पाकिस्तानी एक हमारे भाई हैं शाहिद गुलजार, उन्होंने भी, अगर आप उनको यूट्यूब पर सुने तो उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ जो लोड की हैं उसमें उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है कि मसीह यीशु की पैदाइश जो वो 25 दिसंबर की हो। और उर्दू में अगर आप 8-9वें नाम पर मेरे मुझ नची का भी नाम आप देख सकते हैं, पास्टर ज़ियाउल मसीह, तो मैंने इससे पहले भी फादर मोरस जलाल के साथ बैठकर इस बात को हमने देखा था कि क्या मसीह यीशु की पैदाइश वाकया ही 25 दिसंबर को हुई है और क्या ये हमने खुद से अखज़ कर लिया है या ये बाकायदा से एक हकीकत है और इसे हमारे बुज़ुर्गों ने बाकायदा कैलेंडर्स की कैलकुलेशन के बाद इसको जो था वो कायम किया था। बाद लोग इस पे कॉन्स्टेंटाइन बादशाह पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने ये हमारा कर दिया, वो हमारा कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन बादशाह एक ऐसा बादशाह था जिसने मसीहियों को सपोर्ट किया और वो उस वक्त रोम का बादशाह था और उसने मसीही उलमा को, मसीही पादरी को, मुबशर्स उसको उसने सपोर्ट किया, उसने कि वो जो है वो अहम फैसले करें और मसीही जो मज़हब है उसकी बाकायदा से वो आउटलाइन जो है वो तरतीब दें। उसने उन्हें सपोर्ट किया, फ़ंड किया और उन्हें फैसिलिटेट किया कि वो ऐसा करें। उसने काउंसिल्स बुलवाईं और तमाम मसीही उलमा को इकट्ठा किया कि वो कुछ अहम फैसले जो हैं वो करें। लिहाजा उस वक़्त बहुत से अहम फैसले किए गए और रोम चूँकि मसीहियों की पहली रियासत बना, लिहाजा रोम में ही पहली दफ़ा मसीहियों ने क्रिसमस जो था वो 3री सदी में मनाया। लिहाजा चूँकि इससे पीछे वो बहुत प्रोसिक्यूशन में रहे, उन पर बहुत इज़रसानी होती रही, वो नहीं मना सके। लेकिन इन सवालों का जवाब अभी हम नहीं देंगे, अभी हम डेट की तरफ चल रहे हैं। तो कैसे अखज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में तो ये लिखा नहीं हुआ कि मसीह यीशु की पैदाइश कब हुई, क्या 25 को हुई या वो जनवरी में हुई या कोई कहे कि अगस्त को हुई या कोई कहे कि नहीं जी वो तो नवंबर में हुई थी, वो तो फला महीने में हुई थी। तो वो ये क्यों ऐसा लोग सोचते हैं और वो ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे कि कैसे ये बात अखज़ की जाती है। देखिए लूका की इंजील में हमें मिलता है कि लूका की इंजील पहला बाब उसकी 5-7 आयत में लिखा है कि यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में इबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था, और आगे मैं कुछ छोड़ के पढ़ रहा हूँ कि जब वो खुदावंद के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम सर अंजाम देता था तो ऐसा हुआ, तो उस वक़्त ऐसा हुआ कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि तेरे हाँ तेरी बीवी अलिशबा के यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश होगी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होगा। और फिर हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील और लूका की इंजील के जो मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले जहाँ पर मरकूम है वहाँ से हम ये माखूज करते हैं कि हमें पता चलता है कि किस तरह से मसीह यीशु की जो पैदाइश है वो और यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश का आपस में लिंक है। तो वो इस तरह से है कि चूंकि मसीह यीशु की जो पैदाइश है, मसीह यीशु की माँ मुकद्दसा मरियम जो हैं वो ठीक 6 माह बाद हामला होती हैं, जबकि अलिशबा जो थी, अलिशबा जोजा ज़िक्रिया काहिन, वो हामला होती हैं, तो उनकी पैदाइश के उनकी हामला होने के ठीक 6 माह बाद हमें मिलता है बाइबल में से कि वो अली मुकद्दसा मरियम हामला होती हैं। लिहाजा यीशु मसीह की पैदाइश जो है, यीशु मसीह जो थे वो यूहन्ना इस्तबागी से 6 माह बड़े थे। हमारे पास सिर्फ ये एक क्ल्यू है जिससे हम कोई डेट अखज़ कर सकते हैं, किसी डेट की तरफ जा सकते हैं अगर हम इसकी तरफ जाएं। ये बात ठीक है, खुदा ने इस बात को बाइबल में बयान नहीं किया बल्कि किसी भी डेट को इस तरह से वाज़े तौर पर बयान नहीं किया गया, लेकिन अगर हम चाहें तो बाइबल हमारी हेल्प करती है कि हम इसको जान सकते हैं। कोई ये ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि खुदा ने मसीह यीशु की पैदाइश को अहमियत दी है, उसे जगह दी है, उसे कवरेज दी है। सबसे ज़्यादा जगह अगर किसी की पैदाइश के मामलात को दिया तो वो मसीह यीशु की पैदाइश है। लिहाजा इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों कलीसिया ने ये फैसला किया कि मसीह यीशु की पैदाइश को जो है वो जाना जाए कि वो कब, लिहाजा इसके पीछे यही बात है। अब हम देखते हैं कि इससे हम कैसे अखज़ कर सकते हैं। देखें एक जहाँ पर लिखा है कि यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माने में इबिया के फरीक में से, ज़िक्रिया नाम। अब ये आप तो सोच रहे होंगे कि इबिया फरीक कौन थे और ये हैकल में, दरअसल इसके लिए ये है कि जो ये जो काहिन थे ये हैकल में एक तरतीब के साथ आते थे और ये एक तरतीब के साथ वापस जाते थे, और ये 24 कहनों के फरीक थे और ये हारून की नस्ल से इन्हें वो सिलेक्ट किया गया था। लिहाजा ये अपनी बारी से हैकल में आते थे और हैकल में इबादत के जो तमाम काम थे उन्हें सर अंजाम देकर चले जाते थे। लिहाजा जब ये लिखा है लुका की झील में कि इबिया काहिन का फरीक था, ज़िक्रिया काहिन, तो वो अपनी बारी पर, यानी अपनी बारी पर, इसका मतलब हमें बारी का पता पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हमें जब बारी का पता चल जाता है तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो हम देखते हैं। देखें, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हैकल में काहिन किस तरतीब से आते थे। उसके बाद हमें यह पता करना पड़ेगा कि इबिया काहिन जो कि आठवां फरीक था वो कब हैकल में अपनी इबादत के जो थे, इबादत करवाने के लिए या अपनी बारी पर इबादत की जो तमाम रसूमात थी वो अदा करने के लिए आया होगा। और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि यूहन्ना इस्तबागी की जो खुशखबरी थी ज़िक्रिया काहिन को वो किस महीने में दी गई होगी। और जब उस महीने से आगे हम देख लेंगे कि एलिशबा जो कि ज़िक्रिया काहिन की बीवी थी वो कब हामला हुई, और फिर 6 माह बाद मुकदसा मरियम हामला हुई, और फिर आगे हम यस्सू की तारीख पैदाइश पर ईजीली जा सकते हैं। लिहाजा ये सब हम कैसे जान सकते हैं, देखें पहला तवारीख 24:7-8 से आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पहला तवारीख 24:7-8 अगर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे हमें लिखता है कि हमें मिलता है कि हारून की औलाद में से काहिनों को चुना गया कि ये कहानत का काम सर अंजाम देंगे। और पहला तवारीख 24:1-19 जब आप पढ़ते हैं, पहली आयत से लेकर 19 आयत तक, तो वहां पर लिख ये सारी कहानी दर्ज है कि किस तरह से हारून के 4 बेटे थे, नदब, एबीहू, एलीअज़र और इतमर, और उनमें से 2 की डेथ हो गई और सिर्फ अलीअज़र और इतमर की नस्ल में से जो थे वो चुने गए लोग, और उन अलीअज़र के ख़ानदान से सदूक की नस्ल से 16 और इतमर की नस्ल अखी मलक से 8। लिहाजा ये 16+8=24 ऐसे ख़ानदानों को चुना गया जो कहानत का काम सर अंजाम देंगे। और यही 24 फरीक जो हैं आगे हम देखते हैं पहला तवारीख, जब हम देखते हैं पहला तवारीख उसमें जाकर हम पढ़ते हैं तो हमें ये सारी जो कहानी है 24 में ये मिल जाती है कि किस तरह से जो वो हैकल में आया करते थे अपनी तरतीब के मुताबिक, तो वो किस तरह से वो आया करते थे, तो ये सारी बात हमें मिल जाती है 7वीं आयत से। तो यहाँ पर लिखा है पहली चिट्ठी यहुशरिप की निकली और दूसरी यदिया की और तीसरी हारम की और चौथी शौरीम की और 5वीं मलकिया की, 6ठी म्यामीन की, 7वीं हकूज की, 8वीं इबिया की, और इसी तरह आगे 24 तक बयान किया गया है। लेकिन चूंकि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इबिया काहिन तक ही मखसूस है, लिहाजा हम इबिया काहिन तक, 8वीं उनकी बारी थी, लिहाजा अब हमने देखना है कि वो अपनी 8वीं बारी पर कब आया करते थे। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि वो अपनी बारी पर कब आया करते थे, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो हैकल में रहते कितनी देर के लिए थे। ये 24 फरीक जब हैकल में आते थे तो ये कितनी देर के लिए इबादत कराते थे, तो पहला नज़रिया ये है कि 2 हफ्ते के लिए आते थे, और इसी के मुताबिक मैंने पिछली दफ़ा मसीह यसू की तारीख 10-25 दिसंबर को मखूज भी किया था। लेकिन बाद में इस पर काफ़ी हमने मज़ीद रिसर्च की, कुछ लोगों के सवालात भी आए और हमने उनकी रोशनी में मज़ीद जाना कि दूसरा नज़रिया ये है कि नहीं, जो काहिन थे वो हैकल में 2 हफ्ते के लिए नहीं आते थे, हम 12 × 2 करके वो 24 जो करते थे कि भी हम इसको अंडरस्टूड करते थे कि चूंकि 24 काहिन है लिहाजा उन्हें 12 महीनों में आना होता था, तो लिहाजा 1 महीने में 2 आते होंगे। लेकिन ऐसा जो बाद में देखा गया लोगों ने और हमने बाइबल में से भी कुछ ऐसे हवाले देखे कि गालिब जो इस पे राय है वो है कि वो 1 हफ्ते में सिर्फ रहते थे और सैबत टू सैबत वो रहते थे। तो लिहाजा हमें अब उनकी अरसे का भी पता चल जाएगा कि वो कितनी मुद्दत के लिए हैकल में रहते थे और किस तरतीब से आते थे, किस महीने में इबिया काहिन का फरीक ज़िक्रिया काहिन जो था वो हैकल में आया होगा और वो कितनी देर रहा होगा, और फिर दूसरा फरीक कब आया होगा, फिर और फिर वो 8वां फरीक था, तो इस तरह से हम वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा लिखा है, दूसरा जो नजरिया है उसके हक में, दूसरा तबारीख 23 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, सो लावियों और सारे यहूदा ने यहूदा काहिन के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया, और उनमें से हर शख्स ने अपने लोगों को लिया, यानी उनको जो सैबत को अंदर आते थे और उनको जो सैबत को बाहर चले जाते थे। और आगे लिखा है, यहूदा काहिन ने बारी वालों को रुख्सत नहीं किया था। यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि दरअसल जो काहिन जब हैकल में आते थे पहला तवरीख 24 बाब के मुताबिक, तो वो 24 काहिन किस तरतीब से आते थे कि वो सिर्फ सैबत टू सैबत आते थे, सैबत को अंदर आते थे, सैबत को बाहर, यानी कि सैबत को ही दूसरा फरीक जो था, पहला फरीक जो था वो दूसरे फरीक को ओवर दे देता था, यानी कि वो हैकल में एक फरीक दूसरे को ओवर देता था और दूसरे सैबत पर वो अपना काम शुरू करते थे, फिर वो अगले सैबत तक काम करते थे और अगले सैबत के दरमियान में वो तीसरे फरीक को अपना हैंड ओवर कर देते थे। लिहाजा हमें तरतीब पता चल गई कि वो तकरीबन एक हफ्ते के लिए आते थे। इसके लिए एक और हवाला भी बड़ा अथेंटिक है, वो है पहला तवारीख 9 बाब उसकी 25 आयत, और वहां पे लिखा है, और उनके भाई जो अपने अपने गांव में थे उनको सात सात दिन के बाद नौबत ब नौबत उनके साथ रहने को आना पड़ता था, क्योंकि चारों सरदार दरबान जो लावी थे खास मनसब पर मामूर थे और खुदा के घर की कोठरियों और खजानों पर मुकर्रर थे। देखें, ये जो पूरा फ्रीक यानी पूरा काहिनों का ग्रुप जब आता था तो इसमें क्वायर इंचार्ज, इसमें खजानों पर मामूर लोग और इसमें खास मनसब पर मंसूब लोग और फिर काहिन और फिर हाइब और सरदार काहिन, ये इस पूरा ग्रुप आता था। लिहाजा इस यहां पर भी लिखा है कि वो सात दिन के बाद जो था वो नौबत ब नौबत उनके साथ रहने के लिए आते थे, यानी कि वो सिर्फ सात दिन के लिए आते थे, वो सैबत के एंड से एक सैबत के दरमियान से अपनी इबादत का आगाज ओवर लेते थे। और वो गो कि आजकल ये चर्चेज में ओवर देने का रवाज नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जैसे कि कुछ क्या अपना साल्वेशन आर्मी वाले जो हैं वो इस पर स्ट्रॉन्गली अभी तक जो है वो अमल कर रहे हैं कि वो अपने पादरियों को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं और फिर वो पहला पादरी दूसरे पादरी से आकर ओवर लेता है और फिर वो चर्च में 3 साल के लिए या 4 साल के लिए वो रुकता है। लेकिन उस वक्त की जब बात कर रहे हैं कि हैकल एक ही थी और उसमें 24 हारून की नस्ल के जो काहिन खानदान चुने गए थे वो इबादत करने के लिए आते थे और वो एक हफ्ते के लिए रहते थे। बाइबल में से हमने देख लिया दो हवाले थे, दूसरा तवारीख 23:8 और पहला तवारीख 9:25। लेकिन अभी हमें एक और तारीख से भी इस बात का पता चलता है कि वो सैबत टू सैबत ही रहते थे। फ्लेवियस जोसेफस जो था वो एक पहली सदी ईस्वी का एक जो था वो रोमन यहूदी आलम था, वो तारीख दान था, वो मुकद्दस हस्तियों की वो आबिती भी लिखा करता था, उनकी बायोग्राफीज भी लिखता था। वो 37 AD में उसकी जो थी वो यरूशलम में पैदा हुआ और उसकी वफात रोम इटली में हुई थी। वो भी यही तरतीब बताता है अपने अपनी किताब एंटीक्यूटीज ऑफ ज्यूज, एंटीक्यूटीज ऑफ ज्यूज में वो बताता है। और एंटीक्यूटीज ज्यूज जब हम कैलेंडर पे चलेंगे तो मैं आपको उसका पूरा हवाला जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे जब हम कैलेंडर पर आपको लेके जाएंगे। तो एंटीक्यूटीज ऑफ ज्यूज में हम देखते हैं कि वो वॉल्यूम 8:14 और verse 17 में इस बात को बयान करता है कि हैकल में जो आते थे, हैकल में जो काहिन आते थे अपने फरीक की बारी के मुताबिक, तो वो सैबत टू सैबत आते थे। लिहाजा ये भी हमें पता चल गया कि वो सैबत टू सैबत आते थे। लिहाजा अब हमने सिर्फ ये बात पता करनी है कि किस तरह से हम ये बात जानें, कहां से शुरू करें। अब कैलेंडर पे चलते हैं, चलें आप कैलेंडर पे मेरे साथ चलें। आपको कैलेंडर अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो यहां पर दो कैलेंडर हैं। सबसे पहले यहां पर एक तरफ लिखा है इंग्लिश यानी ग्रीगोरियन कैलेंडर, जो कि पोप ग्रीगोरी जो था उसने इसको डिजाइन किया था, और ये ऐसा कैलेंडर है कि इसने पूरी दुनिया पर इसका गलबा है और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस कैलेंडर के बगैर कोई अपना कैलेंडर भी नहीं बयान कर सकता। इवन कि अगर किसी ने अपने कैलेंडर को राज करने की कोशिश भी करनी है तो फिर भी उसे इस कैलेंडर के मुताबिक डेट बतानी पड़ती है। जैसा कि हमारे मुसलमान भाई हैं वो आपको बताएंगे कि आज 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा कि ये ग्रीगोरियन कैलेंडर की कौन सी तारीख होगी। यानी कि सब लोग इसके मोहताज हैं, इवन के यहूदी जो हैं जो कि हिब्रू कैलेंडर को रखते हैं, उन्हें भी अगर कोई बात बतानी है तो उन्हें ग्रीगोरियन कैलेंडर के साथ उसको बताना पड़ेगा। आजकल इस कैलेंडर अब इस तरफ आप देख रहे हैं वो हिब्रू कैलेंडर है, उसके 12 महीने होते हैं, निसियान या सिवान तमूज एव एलूल तिशरी और मरखेशवान और कैसलेव और تیبت اور شبات اور ادار، اور اسی طرح ہمارے جو گریگورین کے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر۔ لہذا یہ جو ہبریو کیلنڈر ہے آج کل اس کو لوگ نے، کچھ لوگوں نے اس کو پاکستان میں بھی پرنٹ کروایا ہے اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کہ بائبل کا کیلنڈر ہے، اور وہ لوگوں کو اس بات پہ بھی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں بائبل کے کیلنڈر کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، خدا کے کیلنڈر کو، نہ کہ ہمیں یہ جو گریگورین کیلنڈر ہے جس میں بہت سے دیوتاؤں کے نام رکھے گئے ہیں، دیوتاؤں کے ناموں پر مہینوں کے نام ہیں، اگسٹین جو ہے وہ ایک بادشاہ کے نام پر اگست رکھ دیا گیا، یعنی کہ ان کے پاس ایسی آرگیومنٹ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آج کیلنڈر پہ بات تو نہیں کر رہے، لیکن کیلنڈر پر کبھی بات کریں گے۔ یہ جو بائبل کے کیلنڈر کے طور پر یہ نسیان، یہ تموز، یہ تشری وغیرہ مہینے ہیں، یہ بائبل میں ان کے نام درج نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بائبل کا کیلنڈر دکھائے تو اس سے پوچھیں کہ یہ نام بائبل میں کہاں لکھے ہیں۔ بائبل میں ایون نسیان بھی نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ ابیب لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر یہ بائبل کا کیلنڈر کیسے ہوا، اور پھر اور یہ کیلنڈر پھر بھی گریگوری کیلنڈر کا محتاج ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ نہیں بتا سکتے کہ یہودیوں کی عید کب آئی ہے اور وہ کس ہبریو کیلنڈر میں ہے۔ لہذا جب آپ کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 12 مہینے ہیں، لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو ہبریو کیلنڈر ہے اس کے ایک مہینے میں ہمارے جو گریگورین کیلنڈر کے دو ماہ کا آدھا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، یعنی دو پندرواڑے گزر جاتے ہیں، دو 15 دن گزر جاتے ہیں۔ جیسے کہ مارچ پہ اگر آپ چلیں تو وہاں پر لکھا ہے مارچ میں نسیان جو ہے اس میں مارچ اپریل گزر جاتا ہے، یعنی مارچ 15 سے 30، مارچ کا آخری آدھا حصہ اور اپریل کا پہلا آدھا حصہ جو گزرے تو وہ نسیان مہینے میں اس طرح سے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو گریگورین کیلنڈر ہوتا ہے اس کا وہ مارچ اپریل ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب ہم چلیں گے کہ کیسے ہم یہ اخذ کرتے ہیں۔ دیکھیں بعض لوگوں نے اس کو ماخوذ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا لا محالہ، جو کاہن تھے وہ 24 کاہن تھے اور 12 مہینے تھے، لہٰذا وہ دو دو آتے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے یہ بھی سوچ لیا خود ہی سے کہ وہ پہلے مہینے میں ہیکل میں آیا کرتے ہوں گے، وہ پہلے مہینے میں ہیکل میں آیا کرتے ہوں گے، لہٰذا پہلے مہینے میں پہلا فریق تو دو دو آتے تھے، لہٰذا ایک مہینے میں دو گزر گئے، دوسرے مہینے میں چار ہو گئے، تیسرے مہینے میں 6 ہو گئے اور چوتھے مہینے میں 8 ہو گئے۔ یعنی کہ انہوں نے اس طرح سے وہ پہنچ گئے کہ آٹھواں جو ہبریو کیلنڈر ہے اس کے آٹھویں، اس کے چوتھے مہینے کے آخری پندرواڑے میں جو ذکریہ کہنا تھا وہ ہیکل میں آیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے ایک غلط وہ۔ لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہودی جو تھے وہ ہیکل میں کس ترتیب سے، ہیکل کا نیا سال کون سا ہوتا تھا، لہٰذا یہ بہت مشکل ہے کہ یہ پتا کیا جائے کہ وہ کیا پہلے ہی مہینے میں آیا کرتے تھے، وہ نسیان میں ہی آیا کرتے تھے، تو یہ نہیں پتا۔ چونکہ اگر آپ وہ جو کیلنڈر بائبل کا، بائبل کے کیلنڈر کے نام سے پاکستان میں چھپوایا گیا ہے اسی کو آپ دیکھیں تو اس کے اینڈ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہودی جو تھے وہ 4 دفعہ سال میں نیا سال مناتے تھے، نسیان میں وہ مناتے تھے ایک دفعہ کہ ہمیں خدا نے مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا، لہٰذا وہ اس کا مناتے تھے، اس کے بعد وہ الول میں بھی مناتے تھے اور اس میں دو مہینوں میں مناتے تھے اور تشری میں بھی مناتے تھے نیا سال۔ لہذا الول مہینے میں اگر آپ غور سے وہاں پڑھیں تو ایک میں جو تھا وہ ہیکل کے معاملات میں وہ آتے تھے، اور تشری جو تھا اس میں ہیکل کے معاملات میں، اور مذہبی معاملات میں جو نیا سال تھا وہ الول میں وہ مناتے تھے، تشری میں وہ مناتے تھے مذہبی معاملات کا نیا سال، اور الول مہینے میں جو کہ چھٹا مہینہ ہبریو مہینے کا اس میں وہ جو تھا وہ مذہبی معاملات میں مناتے تھے، اور اس طرح سے تشری میں وہ مذہبی معاملات میں، الول میں وہ ہیکل کے معاملات میں۔ لہذا ہم نہیں جان سکتے کہ وہ ہیکل میں کاہن کس ترتیب سے آتے تھے اور وہ کب آتے تھے کہ وہ اپنی انہوں شروع کہاں سے وہ کرتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسا تواریخی، کوئی تاریخی واقعہ کوئی چاہیے تھا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ اس مہینے میں ہیکل میں آتے ہوں گے انہوں نے اس ترتیب سے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے ہمیں ایک تاریخی واقعہ دیکھنا پڑے گا۔ 70 AD کو مسیح یسو کے کہنے کے مطابق، جیسا کہ انہوں نے متی 24 باب میں کہا جب انہیں ہیکل دکھائی گئی تو انہوں نے کہا یہاں ہیکل پر ایک پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا، اور ہیکل جو تھی وہ 70 عیسوی میں برباد ہو گئی، اور وہ جو 70 عیسوی میں ہیکل برباد ہوئی تو اس سے ہمیں ایک ہم کلیو لے سکتے ہیں کہ اس وقت ہیکل میں کون سے کاہنوں کا فریق اپنی عبادت کے جو فرائض سر انجام دینے کے لیے کون سا کاہن جو تھا وہ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ कौन सा कहनों का फरीक ड्यूटी पर मंजूर था, लिहाजा इसको हम कैसे जाने। तो वो यहूदियों की जो किताब है मिशना, उसका आप देख रहे होंगे, अगर पांचवें महीने एव में जाएं तो आप वहां देख सकते हैं कि मिशना, उसका हवाला मैंने नीचे लिखा हुआ है, मिशना बी टी ए डबल एन 29A। और यहां पर लिखा है कि जब हैकल बर्बाद हुई तो उस वक्त यहोशरब जो कि पहला फरीक था काइनों का, वो ड्यूटी पर मौजूद थे। लिहाजा हमें बात क्लियर हो गई कि वो ड्यूटी पर कब आते थे, यानी कि ये तो पांचवा महीना यहां पर हमें नजर आ रहा है यहूदियों का एव, वहां उस वक्त पहला फरीक जो था वो उसके आखिरी मतलब पंद्रवाड़े में, यानी कि जुलाई 15 से आप देख रहे होंगे 15 से 31 जुलाई जो था वो एव महीने का पहला पंद्रवाड़ा है, और अगस्त 1 से 15 दूसरा पंद्रवाड़ा है। लिहाजा वो एंड में आए थे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि तारीख में कि वो किस दिन ऐसा हैकल बर्बाद हो गई थी, तो वो है 10 एव, यानी यहूदियों के कैलेंडर की 10 तारीख, और ग्रीगोरियन कैलेंडर की थी वो 5 अगस्त 70 ईस्वी ब्रोज इतवार को ये हुआ था। लिहाजा इस बात को अगर हम देखें तो फ्लेवियस जोसेफस, जिसका मैं पहले भी बात कर रहा था कि वो कौन था, उसकी मैंने आपको काफ़ी डिटेल भी बताई कि वो पहली सदी में रूमी यहूदी आलम था, तारीख दान था, मुकदस हस्तियों की वो आप बीतियाँ लिखता था, और वो यरूशलम में पैदा हुआ, रोम में उसकी वफात हुई, तो वो अथेंटिक बंदा था, वो भी इस बात को लिखता है, और वो हैकल के बर्बाद होने का गवाह भी था। वो कहता है कि मैं गवाह हूं कि जब हैकल बर्बाद हुई है, तो वो अपनी किताब एंटीक्विटीज ऑफ ज्यूज उसका वॉल्यूम 8 आप पढ़ सकते हैं, अब आपको नजर आ रहा होगा वॉल्यूम 8 चैप्टर 14, और उसकी जो वर्स है वो 7 पे वो जाके वो इस बात को लिखता है कि हैकल जो था वो 5 अगस्त को बर्बाद हुई, और हैकल 2 दफा बर्बाद हुई। ये भी वो एक बात बताता है कि हैकल 2 दफा बर्बाद हुई, और दोनों दफा वो 5 अगस्त से इसके दरमियान में जो हैकल जो है वो बर्बाद होती है, दोनों दफा हैकल जो है वो उसी उन्हीं डेटों पर बर्बाद होती है, यानी कि 10 तारीख को बर्बाद होती है, 10 एव को, और वो 10 एव जो है वो हमारा 5 अगस्त बनता है, और उसको हम देखेंगे वो कैसे बनता है। लिहाजा हमने देखा कि जब हैकल बर्बाद हुई तो पहला फरीक को कहनकों का फरीक जो था वो ड्यूटी पर था, और अगर आप अब अगस्त में आ जाएं मेरे साथ ग्रीगोरियन कैलेंडर अगस्त में आ जाएं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये कैसे हम निकालते हैं कि वो 5 अगस्त उस दिन 5 अगस्त थी। दरअसल जो फर्स्ट एव है अपना 6 BC में, 6 BC में जब हम इस कैलेंडर को जाकर खोलते हैं कि 6 BC में ये तारीखें किस तरह से थीं, तो वो इस तरह से थीं कि एव का जो पहला महीना है वो 27 जुलाई को, पहला दिन 27 जुलाई था, एव की दूसरी तारीख जो थी वो 28 जुलाई को आई थी, और तीसरी तारीख जो थी वो 29 जुलाई को आई थी, चौथी तारीख जो थी वो 30 जुलाई को आई थी, इसी तरह पांचवीं 31 जुलाई को, और छठी जो थी वो 1 अगस्त को, और एव सेवन जो था वो 2 अगस्त को आया था, F8 जो था वो 3 अगस्त को आया था, और F10 या 10 जो था वो 5 अगस्त को आया था। आप ये देख सकते हैं, आपको तरतीब नजर आ रही होगी। लिहाजा ये हैकल जो बर्बाद हुई और वो 5 अगस्त, 5 से 10 अगस्त के दरमियान में ये सब कुछ हुआ, और इसको जब हम यहूदी कैलेंडर में देखते हैं तो वो पांचवें महीने का आखिरी पंद्रवाड़ा, यानी कि अगस्त के आखिरी पहला अगस्त का जो आखिरी पंद्रवाड़ा है उसमें पहला फ्रीक आया होता। लेकिन चूंकि हमने देखा कि जो एक फ्रीक है वो 1 हफ्ते के लिए आता था, और एक आखिरी पंद्रवाड़े में 2 हफ्ते हैं, लिहाजा पहला फ्रीक, अब वहां पर जाएं देखें, पहला फरीक जो था वो अगस्त के पहले हफ्ते में आया, दूसरा फरीक अगस्त के दूसरे हफ्ते में आया वो यदिया, और आगे आप नीचे आ जाएं तो अगस्त के तीसरे हफ्ते में तीसरा फरीक हारम आया, और अगस्त के चौथे हफ्ते में चौथा फरीक शौरीम आया, और आगे सितंबर शुरू हो गया, और सितंबर के पहले हफ्ते में मलकिया जो कि पांचवा फरीक आया, और सितंबर के पहले में सितंबर के पहले हफ्ते में पांचवा फरीक मलकी आया, और सितंबर के दूसरे हफ्ते में मियामीन 6ठा फरीक आया, और फिर इसी तरह सितंबर के हम देखते हैं कि दूसरे तीसरे हफ्ते में हकूद जो कि 7वां फरीक था वो आया, और इबिया जो कि चौथे हफ्ते में आया सितंबर के वो 8वां फरीक था। لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھواں فریق جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ آٹھواں فریق جو ہے وہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں آیا، اور جب ہم ہبریو کیلنڈر میں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہے تشری، تشری کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا پندرواڑہ ہے، اور اگر آپ اسے گریگورین کیلنڈر میں دیکھتے ہیں تو یہ سپٹمبر کا چوتھا ہفتہ تھا، سپٹمبر کا آخری ہفتہ تھا جب ابیا کائن جو تھا وہ اپنی کہانت کے دستور کے مطابق جو تھا وہ ہیکل میں اپنی جو عبادت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، ابیا کائن کا فریق جو تھا، ذکریا کائن جو تھا ابیا فریق کا کائن، وہ اپنی جو اس کے عبادت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ لہذا اس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ جو ابیا کائن کا فریق کا جو کائن ذکریا جا تھا وہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں وہ وہاں پر موجود تھا جب اس کو بتایا گیا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور پھر وہ اس کے بعد اپنے گھر جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے لوکا کی انجیل میں چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں کس طرح سے وہ لکھا ہے کہ وہ جو ذکریا کائن تھا وہ وہاں پر موجود تھا، اور باہر ساری جو عوام تھی وہ موجود تھی، اور وہ خدا کے حضور ذکریہ کہن جو تھا وہ پاک مقام پر خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف جو موجود تھا، تو اس وقت خداوند کے فرشتہ نے، لیکن وہاں پر ایک بڑی خاص بات لکھی ہے لوکا کی انجیل میں، وہ درجہ ہے اگر لکھا ہے لوگوں کی ساری جماعت آگے لکھا باہر دعا کر رہی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابیا کہن تشری کے ساتویں مہینے میں اور سپٹمبر کے آخری ہفتے میں وہاں پر موجود تھا تو یہ کوئی عید کا دن تھا، چونکہ لکھا ہے کہ لوگوں کی ساری جماعت تھی باہر کھڑی، اور یہ یہودیوں میں صرف سات ایسی عیدیں تھیں، سوری تین ایسی عیدیں تھیں جن میں ایک ہفتے کے لیے وہ منائی جاتی تھی، اور تمام یہودی مردوں کو یہ ان پر یہ پابندی ہوتی تھی کہ وہ ہیکل میں یروشلم میں پہنچے اور اس کو ہیکل میں سیلیبریٹ کیا جائے۔ لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہ کب وہ کون سی عید ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 6 BC میں ہمارے پاس صرف ایک عید ایسی تھی جس پر جو تھا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عید خیام تھی 6 BC میں، وہ 27 ستمبر سے لے کر 3 اکتوبر تک وہ عید رہی۔ 27 ستمبر بالکل سپٹمبر کا آخری ہفتہ ہے جس میں نے بتایا کہ وہ وہاں پر آیا، تو وہ وہاں پر عید خیام غالباً وہ عید خیام تھی جس پر ذکریہ وہاں پر موجود تھا، کیونکہ وہاں پر ایک خاص بات لکھی ہے کہ لوگوں کی ساری جماعت باہر تھی اور وہ اندر تھا، یعنی کہ زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور اس بات کو جگہ دی گئی ہے لوکا کی جھیل میں کہ لکھا گیا ہے کہ لوگوں کی ساری جماعت باہر تھی اور بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، چونکہ وہ خاص کوئی دن تھا لہٰذا وہ اندر تھا اور اس وقت مسیح نے بتایا۔ تو یہ 6 BC میں ایسا ہوا تھا، اگر آپ کیلنڈر کو کھولیں 6 BC کے کیلنڈر کو کمپیوٹر کی مدد سے، آپ انٹرنیٹ کی مدد سے کھولیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ 6 BC میں ایسا ہوا تھا کہ عید خیام 27 ستمبر سے 3 اکتوبر یعنی 7 دنوں کے لیے وہ آئی تھی۔ تو لہٰذا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت خدا ان کے فرشتے نے اسے کہا کہ تیرے بیٹا پیدا، اب اس نے وہ اپنی، اور یہ دن کون سا بنتا ہے تو یہ ہے 5 اگست، یہ بنتا ہے 5 اگست 70 AD بروز اتوار کا دن تھا جب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہیکل برباد ہوئی۔ لہٰذا یہ انہوں نے اپنی ہیکل ہفتے تک اپنی جو مذہبی رسومات جو ختم کر لی ہوئی تھی، لہٰذا یہ تقریباً یہاں سے جب پہنچا ہے تو چونکہ لشبا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لکھا ہوا ہے انجیل میں کہ وہ پہاڑی علاقے میں رہتی تھی اور مقدسہ مریم جب اس سے ملنے گئی تو یہ کوئی 10 اکتوبر کے قریب غالباً وہ اپنے گھر جو ذکریا کائن پہنچا ہوگا، اور چونکہ ایسا لکھا ہے کہ ان دنوں کے بعد یہاں پر ایک خاص نقطہ لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی لشبا حاملہ ہوئی، لوکا کی جھیل میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی، یعنی کہ ان دنوں کے بعد، یعنی کہ وہ جب چلا گیا، یعنی اگر دس اکتوبر کو وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، 10 اکتوبر کو گھر پہنچا تو ان دنوں کے بعد اس کی جو بیوی ہے وہ اس نے حاملہ ہونا ہے، تو لہٰذا 10 اکتوبر تک وہ وہاں پر پہنچا ہے और 10 अक्टूबर को वो घर पहुंचा है, और उन दिनों के बाद अगर हम उसकी देखें तो हम इसको ले जा सकते हैं कि वो तकरीबन अक्टूबर के आखिरी पंद्रहवाड़े में जो है वो पहला महीना शुरू हुआ होगा अलिशबा का अक्टूबर, क्योंकि हमसे अक्टूबर 10 तक वो घर पहुंचा है, तो अक्टूबर के अगले 15 दिन हम उसे उन्हें और दे रहे हैं कि वो वहाँ पहुँचा और फिर घर पहुँचा और फिर उन दिनों के बाद उसकी बीवी हमला हुई। तो हम इसको अक्टूबर के 25 तक लेके जा रहे हैं कि हम आखिरी 15 अब अक्टूबर 1 आप गिनना शुरू करें। ये देखें आपने जॉन अक्टूबर में आपको नजर आ रहा होगा लिखा है जॉन 1, तो वहाँ पर लिखा है जॉन 1, जॉन 1 1 नवंबर में, जॉन 2 जनवरी में, जॉन 4 फरवरी में, जॉन 5 और मार्च में जॉन 6। अब छठा महीना जो था अलिशबा को जो था वो जॉन 6 जहाँ पर लिखा है वो मार्च में जो था ज़िक्रिया काहन जो था उसकी बीवी अलिशबा का छठा महीना था मार्च में, जब मार्च में वो छठा महीना था। लेकिन अब हम देखते हैं कि वहाँ जब छठा महीना था अलिशबा का तो तब जो था मुकद्दसा मरियम जो है वो हामला होती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है कि मार्च में मुकद्दसा मरियम जो है वो हामला हुई हैं, और इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो आज भी फीस्ट ऑफ एनाउंसिएशन लेडी डे के तौर पर पूरी दुनिया में ईद बशारत मनाई जाती है, जो कि मुकद्दसा मरियम की हमला होने का दिन जो है वो कैथोलिक क्लीसिया और पूरी दुनिया में उसे मनाती है। लिहाजा मैंने आपको बताया कि 6 अपना जॉन 6 जहां पर मैंने लिखा है मार्च में जाकर आपको नजर आ रहा होगा, तो ये बना कि इसमें मार्च में जो है मुकद्दसा मरियम जो है 25 मार्च के करीब जो है, क्योंकि वो 25 हमने शुरू किया था अक्टूबर में, हमने 25 अक्टूबर से शुरू किया था, तो 25 मार्च में पूरे 6 माह हो गए अलिशबा को हमला हुए, और उस वक्त मुकद्दसा मरियम 25 मार्च को हमला होती हैं। लिहाजा इसको मैंने आपको बताया कि तारीखी तौर पर फीस्ट ऑफ एनाउंसिएशन ईद बशारत भी मनाई जा रही है। तो फिर आगे हम चलते हैं कि यहां से अब हम मसीह यसु की विदाई, अगर हम जॉन को भी आगे लेके जाना चाहें तो आप देखें अप्रैल में जॉन 7 हो जाएगा, यानी कि यूहन्ना का जो हमल था अलिशबा को उसका 7वां महीना हो जाएगा, मई में जॉन 8 यानी कि 8वां महीना हो जाएगा, और जून में जॉन 9 मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि जून में जो है वो पैदाइश होनी चाहिए यूहन्ना इस्तबागी की। और बिल्कुल आप अगर आप देखें जो जहां पे मैंने लिखा हुआ है जून में लिखा है 24 जून फीस्ट ऑफ बर्थ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन मैस के नाम से आज भी जॉर्डन जो कि नेटिविटी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट है वहां पर मनाई जाती है, और वहां पर मजहबी हलकों में छुट्टी होती है और इसे अहमियत दी जाती है। यानी हमने दो तारीखी हवालों से देख रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि यूहन्ना जो था वो 24 जून को पैदा हुआ था तो इसको पूरी दुनिया में मनाया भी जा रहा है, आज भी जॉर्डन में यर्दन जो कि जॉर्डन एक मुल्क है वहाँ पर उसको मनाया जाता है, और वहाँ पर मसीहों को बड़ी अहमियत भी दी जाती है, और वहाँ पर बाकायदा मजहबी हलकों में इसकी छुट्टी होती है। अब लेकिन चूंकि मुकद्दसा मरियम का हमने देखा था कि मार्च 25 मार्च को वो हमला होती है, उसकी ईद भी मनाई जाती है ईद बशारत, तो वहाँ उसको हम डेज जीसस 0 और अप्रैल में जीसस 1, मई में जीसस 2 और जून में जीसस 3, जुलाई में जीसस 4, अगस्त में जीसस 5, सितंबर में जीसस 6, अक्टूबर में जीसस 7, नवंबर में जीसस 8 और दिसंबर में जीसस 9। अब आपने देखा कि दिसंबर में किस तरह से हम इस बात पर पहुंचे कि जो दिसंबर में यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम जो था उसको 9वां महीना था, और बिल्कुल दिसंबर के एंड में, क्योंकि हमने ये बात शुरू की थी हमने बात शुरू थी अक्टूबर 25 से, और फिर हम पहुंचे मार्च 25, फिर हम पहुंचे जून 24 और फिर अब हम पहुंच रहे हैं दिसंबर 25 पे। लिहाजा दिसंबर 25 जो है वो मसीह यीशु की जो तारीख पैदाइश का दिन है वो बिल्कुल सही अखज किया गया है, और इसको बिल्कुल हम तारीखी हवाले से समझ सकते हैं कि किस तरह से मसीह यीशु की पैदाइश जो है वो दिसंबर के महीने में हुई है, और इसको पूरी दुनिया में है वो बिल्कुल सही। और जब से मसीह यीशु की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर के तौर पर अपनाई गई है तब से लेकर आज तक ये उसी तरह कायम दायम है, और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, और اس کو خدا نے قائم رکھا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ باندھ جائے گا۔ لہذا جب مسیحوں نے کانسٹنٹائن بادشاہ کی حکومت میں ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا، انہوں نے اس بات کو اخذ کیا، ماخوذ کیا، اس کی کیلکولیشنز کرنے کے بعد اس کو رائج کیا، تو وہ 25 دسمبر کو انہوں نے رائج کیا۔ اور یہ 25 دسمبر جو ہے ہم نے آپ کو کیلکولیشن سے بتا دیا کہ کس طرح سے کاہن جو تھے وہ اپنی ترتیب سے آتے تھے، اور پھر وہ کس طرح سے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تاریخی ایک حوالے سے ہم پہنچے کہ وہ ماہ ایو میں اگست کے آخری پندرواڑے سے انہوں نے شروع کیا ہوگا، لہٰذا وہ تیسری کے مہینے کے پہلے پندرواڑے میں یعنی کہ سپٹمبر میں 8واں فریق آیا، پھر 8ویں فریق سے ہم نے آگے جو کیلکولیشن کی ہے، تو اسے آپ یہ ساری بات سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح سے مسیح یسو کی پیدائش جو 25 دسمبر ہے وہ ایک صحیح تاریخ ہے، اور اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط تاریخ ہے تو اسے ان تمام تواریخی شواہد کو جھٹلانا ہوگا، اور اس کو اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ایسا یہ تاریخ جو ساری تاریخی شواہد ہیں یہ غلط ہیں۔ لیکن ہم اس بات کا پکا یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے جس کو اس ڈیٹ کو قائم رکھا ہے، اس سیلیبریشن کو قائم رکھا ہے، چونکہ یہ خدا روح القدس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس ڈیٹ کو جو ہم کرسمس منا رہے ہیں، جو بھی مسیحی 25 دسمبر کو منا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک منا رہے ہیں، اور یہ یسوع کی صحیح تاریخ پیدائش ہے۔ شکریہ۔